एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूँ आपकी पहली मेजबान। आज एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं।
नमस्कार, मैं हूँ आपका दूसरा मेजबान। और हाँ, आज की किताब का विषय शायद आपको चौंका दे। हम बात कर रहे हैं चेकलिस्ट की।
बिल्कुल, किताब है अतुल गवांडे की द चेकलिस्ट मैनिफेस्टो, हाउ टू गेट थिंग्स राइट। अब पहली बार सुनने में लगता है चेकलिस्ट शॉपिंग लिस्ट जैसी, इसमें ऐसा क्या खास है?
हाँ, यही तो मजेदार बात है। ये किताब कहती है कि आज की दुनिया, मतलब चाहे वो हॉस्पिटल का ऑपरेशन थिएटर हो, हवाई जहाज का कॉकपिट हो, या कोई बड़ा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, इतना जटिल हो गया है कि सबसे काबिल इंसान से भी चूक हो सकती है।
और ज्यादातर गलतियां, ये किताब कहती है, इसलिए नहीं होती कि हमें पता नहीं है, मतलब अज्ञानता नहीं।
सही कहा, बल्कि इसलिए होती हैं कि जो हमें पता है उसे हम ठीक से हर बार इस्तेमाल नहीं कर पाते। इसे लेखक कहते हैं अकुशलता या इनएप्टिट्यूड।
और यहीं पर चेकलिस्ट एक समाधान की तरह सामने आती है। ये किताब आज खास तौर पर प्रासंगिक है क्योंकि हम सब अपने काम में, अपनी जिंदगी में बेहतर होना चाहते हैं ना, गलतियों से बचना चाहते हैं।
बिल्कुल, तो चलिए आज इसी की गहराई में उतरते हैं। देखते हैं कि ये साधारण सी दिखने वाली चीज चेकलिस्ट कैसे बड़े बदलाव ला सकती है। शुरुआत करते हैं लेखक से। कौन है ये डॉक्टर अतुल गवांडे?
हाँ, तो डॉक्टर अतुल गवांडे सिर्फ एक लेखक नहीं है, और यही बात उन्हें बहुत खास बनाती है। वो असल में एक प्रैक्टिसिंग सर्जन है, बॉस्टन के ब्रिगम एंड वुमेन्स हॉस्पिटल में जनरल और एंडोक्राइन सर्जन। सोचिए,
मतलब वो रोज ऑपरेशन थिएटर में होते हैं, उन जटिल हालात से जूझते हैं जिनके बारे में वो लिख रहे हैं।
वो पब्लिक हेल्थ में प्रोफेसर भी हैं और द न्यूयॉर्कर जैसी प्रतिष्ठित मैगजीन के लिए लिखते भी हैं। उनकी पिछली किताबें भी जैसे कॉम्प्लिकेशंस, मेडिकल गलतियों पर उनकी बेबाक नजर के लिए जानी जाती हैं।
तो खास बात यह है कि वो सिस्टम के अंदर के व्यक्ति हैं, कोई बाहरी एक्सपर्ट नहीं जो सिर्फ सिद्धांत बता रहा हो। वो खुद उन हाई स्टेक, मतलब जहां बहुत कुछ दांव पर लगा हो, उन स्थितियों का रोज सामना करते हैं। मानवीय चूक, सिस्टम की कमियां, इन सब से वो रोज जूझते हैं।
इसीलिए जब उनके जैसा अनुभवी सर्जन जो रोज गलतियों के नतीजे देखता है चेकलिस्ट जैसे साधारण से उपाय की वकालत करता है तो बात में वजन होता है।
हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं रह जाती, ये एक प्रैक्टिशनर का अनुभव है। ये जानना कि लेखक खुद इन चुनौतियों से गुजरता है, उनके समाधान को और ज्यादा भरोसेमंद बनाता है।
चलिए अब किताब पर आते हैं, द चेकलिस्ट मैनिफेस्टो। आखिर ये है किस बारे में, इसका मूल विचार क्या है?
देखिए, किताब शुरू ही इस सवाल से होती है कि भाई, आज ज्ञान इतना बढ़ गया है, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, फिर भी गलतियां क्यों होती हैं, खासकर उन फील्ड्स में जहां बहुत माहिर लोग काम करते हैं, जैसे सर्जरी, पायलट या बड़े इंजीनियर्स।
और गवांडे का जवाब है जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी, है ना?
हाँ, आज किसी एक काम करने में इतने ज्यादा स्टेप्स होते हैं, इतनी सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि किसी अकेले इंसान के लिए, चाहे वो कितना भी काबिल क्यों ना हो, सब कुछ हर बार 100% सही याद रखना और करना लगभग नामुमकिन सा है।
और यहीं पर वो अकुशलता वाली बात आती है, मतलब इनएप्टीट्यूड। ज्ञान तो है पर उसे सही ढंग से लागू नहीं कर पा रहे।
एकदम सही। और किताब का जो सेंट्रल आइडिया है वो ये है कि इस अकुशलता से लड़ने का एक बहुत मजबूत, बहुत प्रभावी तरीका है चेकलिस्ट।
पर ये कोई बच्चों वाली लिस्ट नहीं है।
नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ये विशेषज्ञों के लिए एक तरह का संज्ञानात्मक सुरक्षा जाल है, एक कॉग्निटिव सेफ्टी नेट। ये उन बुनियादी लेकिन जरूरी चीजों को नजरअंदाज होने से बचाती है ताकि एक्सपर्ट्स अपना पूरा ध्यान ज्यादा मुश्किल, अप्रत्याशित चीजों पर लगा सकें।
जैसे पायलट वाला उदाहरण आपने दिया, उसे पता है हवाई जहाज कैसे उड़ाना है, पर चेकलिस्ट ये पक्का करती है कि कोई छोटा सा मगर जरूरी स्विच ऑन करना ना भूल जाए।
बिल्कुल, और ये किताब सिर्फ मेडिकल फील्ड की बात नहीं करती। गवांडे हमें एविएशन, कंस्ट्रक्शन या तक कि इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट और रेस्टोरेंट चलाने जैसे अलग अलग उदाहरण देते हैं।
हाँ, दिखाते हैं कि जहां भी जटिलता है, जहां भी मानवीय चूक का खतरा है, वहां ये सिद्धांत काम करता है। कैसे अनुशासन, मानकीकरण यानी स्टैंडर्डाइजेशन और टीमवर्क मिलकर काम को बेहतर बनाते हैं।
तो सार ये है कि चेकलिस्ट सिर्फ याददाश्त का बैसाखी नहीं है, ये टीम के काम करने का तरीका बदलती है, कम्युनिकेशन सुधारती है, अनुशासन लाती है, ये एक तरह से प्रोफेशनलिज्म को ही फिर से परिभाषित करती है, मतलब अकेले जीनियस वाले मिथक से हटकर विनम्रता, अनुशासन और टीमवर्क पर जोर।
चलिए अब किताब में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। अध्यायवार अगर देखें तो कहानी कैसे आगे बढ़ती है, पहले भाग में वो समस्या को कैसे सामने रखते हैं?
हाँ, किताब का पहला हिस्सा है द प्रॉब्लम, और ये शुरू होता है मेडिसिन की जटिलता से। डॉक्टर गवांडे बताते हैं कि आज एक औसत आईसीयू मरीज की देखभाल में करीब 178 अलग अलग काम या प्रक्रियाएं शामिल हो सकती हैं।
178? बापरे।
हाँ, तो जाहिर है इसमें गलती की गुंजाइश तो रहेगी। वो आंकड़े देते हैं कि कैसे ऐसी गलतियां जिन्हें रोका जा सकता था उनसे मरीजों को नुकसान पहुंचता है। और फिर वही बात, प्रॉब्लम ज्ञान की कमी उतनी नहीं जितनी उसे अमल में लाने की कमी है।
और फिर आता है वो एविएशन वाला क्लासिक उदाहरण, है ना, 1935 का बोइंग मॉडल 299 बॉमर।
ओह हाँ, वो तो कमाल का उदाहरण है। ये विमान तब तक के बने विमानों से कई ज्यादा कॉम्प्लेक्स था, बहुत बड़ा, 4 इंजन वाला। इसकी पहली टेस्ट फ्लाइट थी। उड़ाने वाले थे सेना के सबसे अनुभवी टेस्ट पायलट में से एक, मेजर पटनर केली।
और क्या हुआ?
टेक ऑफ के तुरंत बाद विमान स्टॉल हुआ, एक पंख नीचे गया और जमीन पर गिरकर आग लग गई। मेजर केली और को पायलट की मौत हो गई।
वजह क्या थी इतनी बड़ी मशीन?
वजह एक छोटी सी मानवीय भूल। पायलट रडर और एलिवेटर कंट्रोल्स पर लगे लॉक खोलना भूल गए थे। ये नए विमान में एक जरूरी कदम था जो पुराने विमानों में नहीं होता था।
हाँ।
सेना ने लगभग मान लिया कि ये विमान इतना जटिल है कि इसे एक आदमी उड़ा ही नहीं सकता।
लेकिन फिर उन्होंने प्रोजेक्ट बंद तो नहीं कर दिया?
नहीं, कुछ दूसरे टेस्ट पायलटों ने बैठकर सोचा और उन्होंने एक बहुत ही सरल लेकिन क्रांतिकारी समाधान निकाला, एक पायलट चेकलिस्ट। उन्होंने टेक ऑफ, फ्लाइट, लैंडिंग और टैक्सिंग के लिए जरूरी स्टेप्स की एक लिस्ट बनाई, छोटी सी, इंडेक्स कार्ड पर।
और वो काम कर गई?
हाँ, गजबदा काम किया। इस चेकलिस्ट की मदद से पायलटों ने इस विमान को लाखों मील बिना किसी बड़ी दुर्घटना के उड़ाया। ये विमान बाद में B-17 फ्लाइंग फोर्ट्रेस के नाम से मशहूर हुआ और दूसरे विश्व युद्ध का हीरो बना। इसने साबित कर दिया कि जटिलता को मैनेज किया जा सकता है। चेकलिस्ट सिर्फ एक लिस्ट नहीं थी, वो अनुशासन और प्रक्रिया का प्रतीक बन गई।
ये वाकई जबरदस्त कहानी है। अच्छा, फिर किताब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात भी करती है। गगनचुंबी इमारतें बनाना, वो भी तो बहुत जटिल काम है।
बिल्कुल, गोवंडे बताते हैं कि कैसे पुराने जमाने के मास्टर बिल्डर का दौर अब नहीं रहा, जो अकेले सब कुछ डिजाइन भी करते थे और बनवाते भी थे। आज एक गगनचुंबी इमारत बनाने में सैकड़ों अलग अलग विशेषज्ञ टीमें होती हैं। हजारों ऐसे काम होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं और डेडलाइन बहुत सख्त होती है।
तो यहाँ सफलता कैसे मिलती है?
यहाँ सफलता का राज किसी एक जीनियस आर्किटेक्ट या इंजीनियर में नहीं है, बल्कि कम्युनिकेशन, शेड्यूलिंग और कोऑर्डिनेशन के सिस्टम में है। यहाँ दो तरह की चेकलिस्ट काम करती हैं, एक तो डिजाइन और प्लानिंग के लिए ताकि कुछ छूटे नहीं, और दूसरी कम्युनिकेशन के लिए ताकि हजारों कारीगरों और दर्जनों टीमों के बीच तालमेल बना रहे। कौन कब क्या करेगा, किसकी जिम्मेदारी क्या है, किससे बात करनी है, ये सब तय होता है। ये अनिवार्य रूप से चेकलिस्ट के सिद्धांत ही हैं।
तो समस्या समझी, उदाहरण देखे, अब किताब ये बता दी होगी कि अच्छी चेकलिस्ट बनाई कैसे जाए, मतलब दूसरा भाग द चेकलिस्ट।
एकदम सही। इस हिस्से में गवांडे हमें मिलाते हैं डैनियल बूरमैन से, जो बोइंग में चेकलिस्ट बनाने के एक्सपर्ट थे। बूरमैन कुछ सिद्धांत बताते हैं एक अच्छी चेकलिस्ट के लिए।
क्या सिद्धांत है वो?
पहला, वो संक्षिप्त होनी चाहिए, ब्रीफ, बूझिल नहीं, आमतौर पर 5 से 9 आइटम्स। दूसरा, सटीक, प्रिसाइज, भाषा एकदम साफ, कोई गोलमोल बात नहीं। तीसरा, उपयोगी, फंक्शनल, काम के दौरान आसानी से इस्तेमाल हो सके, रुकावट ना बने। और चौथा, कोशिश हो कि एक पेज पर आ जाए,
सिंगल पेज। और वो दो तरह की चेकलिस्ट की बात भी करते हैं, रीडू और डू कन्फर्म।
हाँ, ये जरूरी है। रीडू मतलब लिस्ट में आइटम पढ़ो और फिर वो काम करो, जैसे कोई रेसिपी फॉलो करते हैं, हर स्टेप बताया जाता है। ये उन कामों के लिए ठीक है जहां क्रम बहुत जरूरी है और आप हर बार ठीक वैसे ही करना चाहते हैं।
और दूसरी,
डू कन्फर्म। दो कन्फर्म वहां काम आती है जहां लोग ज्यादा अनुभवी होते हैं और काम अपनी मेमोरी से करते हैं, जैसे सर्जरी या प्लेन उड़ाना। इसमें आप काम करते जाते हैं लेकिन बीच बीच में खास मौकों पर, जिन्हें पॉज पॉइंट्स कहते हैं, रुककर चेकलिस्ट से कन्फर्म करते हैं कि सारे जरूरी काम हो गए हैं या नहीं। ये ज्यादा लचीला तरीका है।
अच्छा, और गवांडे ने खुद भी कोशिश की थी अपने ऑपरेशन रूम के लिए चेकलिस्ट बनाने की, उनका अपना अनुभव कैसा रहा?
हाँ, और वो अनुभव बताता है कि ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं। जब उन्होंने पहली बार कोशिश की तो उन्हें अपने साथी सर्जनों और नर्सिंग स्टाफ से काफी विरोध झेलना पड़ा।
विरोध क्यों?
लोगों को लगा कि ये उनकी काबिलियत पर शक करने जैसा है कि क्या हमें ये भी याद दिलाना पड़ेगा। फिर उनकी पहली चेकलिस्ट बहुत लंबी और अव्यवहारिक थी। इससे ये सीख मिलती है कि चेकलिस्ट बनाना सिर्फ लिस्ट बनाना नहीं है, आपको टीम को साथ लेना पड़ता है, उनकी राय लेनी पड़ती है, उसे बार बार टेस्ट करके सुधारना पड़ता है, उसे प्रैक्टिकल बनाना सबसे जरूरी है।
बात तो सही है। और फिर कहानी पहुंचती है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO तक। ये कैसे हुआ? ये तो बहुत बड़ा स्केल हो गया।
हाँ बिल्कुल, WHO ने डॉक्टर गवांडे को एक बहुत बड़े और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का नेतृत्व करने के लिए कहा। प्रोजेक्ट था दुनिया भर में सर्जरी से होने वाली मौतों और जटिलताओं को कम करना।
पूरी दुनिया के लिए ये तो जबरदस्त चुनौती रही होगी।
हाँ, लक्ष्य था एक ऐसी यूनिवर्सल सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट बनाना जो सरल हो, सिर्फ 2 मिनट में पूरी हो जाए और जिसे दुनिया के किसी भी कोने में, चाहे वो बहुत अमीर अस्पताल हो या संसाधनों की कमी वाला, इस्तेमाल किया जा सके।
और उन्होंने ये कैसे किया? मतलब अलग अलग देश, अलग अलग सिस्टम?
उन्होंने दुनिया भर के सर्जन्स, एनेस्थेटिस्ट्स, नर्सेज, पेशेंट सेफ्टी एक्सपर्ट्स की एक टीम बनाई। बहुत बहस हुई, बहुत सारे ड्राफ्ट बने, टेस्टिंग हुई, आखिरकार एक 19 आइटम की चेकलिस्ट तैयार हुई।
19 आइटम 2 मिनट में?
हाँ, इसमें 3 मुख्य पॉज पॉइंट्स यानी रुकने के क्षण थे। पहला साइन इन, एनेस्थीसिया देने से ठीक पहले। इसमें मरीज की पहचान, ऑपरेशन की सही जगह, कंसेंट वगैरह कंफर्म करते थे। दूसरा टाइम आउट, पहला चीरा लगाने से ठीक पहले। यहां पूरी टीम रुककर एक बार फिर जरूरी बातें कंफर्म करती थी, क्या सबको पता है क्या करना है, कोई खास खतरा तो नहीं, एंटीबायोटिक्स दी गई हैं या नहीं। तीसरा साइन आउट, मरीज के ऑपरेशन रूम छोड़ने से पहले। इसमें कंफर्म करते थे कि ऑपरेशन का नाम सही रिकॉर्ड हुआ, सारे उपकरण और सुइयां गिनी गई, स्पेसिमन सही से लेबल हुए, आगे की देखभाल का प्लान क्या है।
और इसमें वो कम्युनिकेशन वाली बात भी थी।
हाँ, ये बहुत जरूरी था। टाइम आउट के दौरान टीम के सभी सदस्यों को नाम से अपना परिचय देने के लिए कहा जाता था। इससे टीम में बराबरी का माहौल बनता था और नर्स या जूनियर डॉक्टर भी अपनी चिंताएं बताने में हिचकते नहीं थे। ये सिर्फ टिक करने वाली लिस्ट नहीं थी, ये टीम को एक साथ लाने का तरीका था।
ठीक है, चेकलिस्ट बन गई। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये काम आई?
किताब का तीसरा भाग इधर टेस्ट, यहाँ क्या पता चला?
और यहीं पर नतीजे मतलब चौंकाने वाले थे। WHO ने इस चेकलिस्ट का एक बड़ा पायलट टेस्ट किया 8 अलग अलग शहरों के अस्पतालों में। ये शहर बहुत अलग थे, टोरंटो जैसा अमीर शहर, नई दिल्ली, अम्मान, जॉर्डन, ऑकलैंड न्यूजीलैंड, मनीला फिलीपींस, इफाकारा तंजानिया जैसा ग्रामीण इलाका, लंदन और सियाटल।
यानी हर तरह के माहौल में टेस्ट किया गया और नतीजे?
नतीजे स्टुपेंडस थे, जैसा आपने कहा था। जिन अस्पतालों ने चेकलिस्ट का इस्तेमाल शुरू किया वहां बड़ी सर्जिकल जटिलताओं में औसतन 36% की कमी आई।
36%, ये बहुत ज्यादा है।
रुकिए और सुनिए, सर्जरी से होने वाली मौतों में 47% की गिरावट दर्ज की गई।
47% मतलब लगभग आधी मौतें कम हो गई। हाँ, जरा सोचिए, 1-2 मिनट की चेकलिस्ट जिसे लागू करने में कोई बड़ा खर्चा नहीं आया, उसने सर्जरी के नतीजों में इतना बड़ा सुधार कर दिया। और ये सुधार अमीर और गरीब हर तरह के अस्पतालों में देखा गया। ये डेटा बहुत शक्तिशाली था।
ये तो वाकई अविश्वसनीय है। तो फिर इसे हर जगह क्यों नहीं अपनाया जाता? अगर ये इतनी कारगर है तो क्या बाधाएं हैं?
सबसे बड़ी बाधा, जैसा हमने पहले भी जिक्र किया, वो है पेशेवर अहंकार, प्रोफेशनल ईगो, और अपनी स्वायत्तता, अपनी आज़ादी खोने का डर। कई अनुभवी डॉक्टर्स, सर्जन्स, पायलट्स को लगता है कि उन्हें चेकलिस्ट की जरूरत नहीं है, ये उनकी विशेषज्ञता पर सवाल उठाने जैसा है, या ये उनके काम में दखल है। उन्हें लगता है, मैं इतना काबिल हूं, मुझसे ये छोटी मोटी गलती हो ही नहीं सकती।
ये मानवीय स्वभाव है शायद। तो इसका जवाब गवांडे कैसे देते हैं?
वो एक और बहुत शक्तिशाली कहानी सुनाते हैं, कैप्टन चेस्ली सली सलनबर्गर की। याद है 2009 में US एयरवेज की फ्लाइट 1549?
हाँ हाँ, वो जिन्होंने प्लेन को हडसन नदी पर उतार दिया था।
बिल्कुल, जब पक्षियों के टकराने से विमान के दोनों इंजन बंद हो गए थे, वो एक अभूतपूर्व संकट था। लेकिन गवांडे बताते हैं कि उस भयानक दबाव और अफरातफरी के बीच भी कैप्टन सली और उनके को पायलट जेफ स्काइड्स ने क्या किया। उन्होंने शांति से, व्यवस्थित तरीके से अपनी इमरजेंसी चेकलिस्ट का पालन किया, एक के बाद एक।
उस वक्त भी?
हाँ, उनकी वीरता सिर्फ विमान को कंट्रोल करने में नहीं थी, उनकी असली वीरता थी उस चरम संकट में भी अनुशासन बनाए रखने में, प्रक्रियाओं का पालन करने में। और इसी अनुशासन ने, इसी चेकलिस्ट ने उनके दिमाग को उन चीज़ों से आज़ाद रखा जो रूटीन थी, ताकि वो अपनी पूरी ऊर्जा उस अनूठी समस्या को सुलझाने में लगा सकें जिसका कोई बना बनाया जवाब नहीं था, यानी नदी पर लैंडिंग कैसे की जाए।
वाह, ये बहुत गहरी बात है कि सच्ची व्यावसायिकता सिर्फ हुनर या टैलेंट नहीं है, बल्कि अनुशासन और विनम्रता भी है। ये मानना कि प्रक्रियाएं हमारी मदद के लिए हैं, हमारी काबिलियत पर सवाल उठाने के लिए नहीं।
एकदम। और किताब के आखिर में ग्वांदे और भी उदाहरण देते हैं कैसे इन्वेस्टमेंट गुरु मुनीश पबराय भावनात्मक फैसलों से बचने के लिए निवेश करने से पहले चेकलिस्ट इस्तेमाल करते हैं, कैसे बड़े रेस्टोरेंट चेन ये सुनिश्चित करते हैं कि उनका खाना हर बार एक जैसा अच्छा बने प्रक्रियाओं और चेकलिस्ट के जरिए। संदेश बिल्कुल साफ है, आज की जटिल दुनिया में सफलता अकेले किसी की प्रतिभा पर नहीं, बल्कि टीमवर्क, अनुशासन और प्रभावी सिस्टम पर निर्भर करती है, और चेकलिस्ट इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण, हालांकि अक्सर नज़रअंदाज किया जाने वाला टूल है।
तो इस पूरी बातचीत को अगर समेटें तो कुछ मुख्य विषय या संदेश क्या उभर कर आते हैं? क्या है वो 3-4 सबसे ज़रूरी बातें जो हमें इस किताब से सीखनी चाहिए?
मेरे ख्याल से पहली और सबसे बुनियादी बात है अकुशलता बनाम अज्ञानता, इनएप्टीट्यूड वर्सेस इग्नोरेंस। आज की दुनिया में ज़्यादातर बड़ी गलतियाँ इसलिए नहीं होती कि हमें पता नहीं क्या करना है, बल्कि इसलिए होती हैं कि हम जो जानते हैं उसे लगातार भरोसेमंद तरीके से अमल में नहीं ला पाते। ज्ञान बहुत है पर उसका एप्लीकेशन कमज़ोर है।
हाँ, ये बात मुझे भी बहुत सोचने पर मजबूर करती है। दूसरा संदेश जो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है वो है विनम्रता और अनुशासन की ज़रूरत, नीड फॉर ह्यूमिलिटी एंड डिसिप्लिन। ये मानना कि मैं एक्सपर्ट हूँ, मुझसे गलती नहीं हो सकती, ये सोच ही खतरनाक है। ये स्वीकार करना कि हम सब इंसान हैं, हमसे चूक हो सकती है, और इसलिए हमें सिस्टम और प्रक्रियाओं की मदद लेनी चाहिए, यही असली प्रोफेशनलिज्म है।
बिल्कुल। और तीसरा, टीम प्रभावशीलता व्यक्तिगत कौशल से बढ़कर है, खासकर जटिल कामों में। सफलता किसी एक हीरो की वजह से नहीं मिलती, पूरी टीम के तालमेल से मिलती है। चेकलिस्ट सिर्फ याद दिलाने का काम नहीं करती, वो टीम कम्युनिकेशन को बेहतर बनाती है। जब ऑपरेशन से पहले सब एक दूसरे का नाम जानते हैं, जब नर्स को भी अपनी बात कहने का मौका मिलता है, तो पूरी टीम बेहतर परफॉर्म करती है। हमारे देश में, भारत में, जहां कभी कभी हायरार्की टीम वर्क पर हावी हो जाती है, ये सिद्धांत बहुत मायने रखता है।
सही कहा। और चौथा, शायद सरलता और मानकीकरण की शक्ति, पावर ऑफ सिंप्लिसिटी एंड स्टैंडर्डाइजेशन। हम अक्सर सोचते हैं कि बड़ी कॉम्प्लेक्स समस्याओं के समाधान भी कॉम्प्लेक्स ही होंगे, लेकिन चेकलिस्ट दिखाती है कि कभी कभी सबसे असरदार उपाय आश्चर्यजनक रूप से सरल होते हैं। जरूरी रूटीन चीजों को स्टैंडर्डाइज करने से गलतियों का चांस कम हो जाता है और हमारा दिमाग उन मुश्किल अप्रत्याशित चीजों पर फोकस करने के लिए आजाद हो जाता है जो सच में हमारी विशेषज्ञता मांगती हैं।
एक बात और जोड़ना चाहूंगा, प्रमाण आधारित बदलाव, एविडेंस बेस्ड चेंज। ग्वांडे सिर्फ फिलॉसफी नहीं दे रहे, वो WHO स्टडी जैसा ठोस डेटा पेश करते हैं। ये दिखाता है कि जब सबूत साफ तौर पर किसी चीज के फायदे दिखाएं, तो हमें अपनी पुरानी आदतों या मान्यताओं को चुनौती देने और बदलाव को अपनाने के लिए तैयार होना चाहिए।
हाँ, ये किताब वाकई कई स्तरों पर सोचने को मजबूर करती है। इसमें कुछ पंक्तियाँ या विचार ऐसे हैं जो दिमाग में अटक जाते हैं, कुछ ऐसे विचार साझा करना चाहेंगे?
हाँ बिल्कुल। कुछ बातें जो मुझे खास तौर पर असरदार लगी, एक तो वही शुरुआत वाली बात, हमने ज्ञान और टेक्नोलॉजी का पहाड़ खड़ा कर लिया है, लेकिन फिर भी रोकी जा सकने वाली गलतियां होती रहती हैं। वजह, ज्ञान की मात्रा और जटिलता इतनी बढ़ गई है कि हमारी उसे सही ढंग से लागू करने की क्षमता पीछे रह गई है। ये पूरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। दूसरी बात, चेकलिस्ट विशेषज्ञों के कौशल का विकल्प नहीं बल्कि सहारा है। ये कोई इंस्ट्रक्शन मैनुअल नहीं है। ये बात एक्सपर्ट्स की झिझक कम करने के लिए जरूरी है। ये आपकी मदद के लिए है, आपकी जगह लेने के लिए नहीं। तीसरी, चेकलिस्ट बेवकूफी भरी लेकिन जरूरी रूटीन चीजों को आपके दिमाग से हटा देती है, ताकि आपका दिमाग मुश्किल चीजों पर फोकस कर सके। ये इसका कॉग्निटिव फायदा है। रूटीन काम ऑटोपायलट पर, ताकि मुश्किल चुनौती के लिए मेंटल स्पेस रहे। और चौथी, ये सिर्फ टिक बॉक्स करने का काम नहीं है, ये एक बातचीत है। टीम के लोगों को अपनी चिंता बताने का मौका है। ये टीम वर्क और कम्युनिकेशन वाले पहलू पर जोर देता है।
ये सारे विचार बहुत ही प्रैक्टिकल और लागू करने लायक लगते हैं। तो अब असली सवाल, हम, आप, हमारे श्रोता इन विचारों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं?
अरे बहुत तरीकों से। पेशेवर दुनिया में तो खैर अनगिनत संभावनाएं हैं, जैसे डॉक्टर जब एक शिफ्ट से दूसरी शिफ्ट को मरीज हैंडओवर करते हैं या राउंड्स पर जाते हैं, सॉफ्टवेयर वाले जब कोड रिव्यू करते हैं या कोई नया सॉफ्टवेयर डिप्लॉय करते हैं, फाइनेंस में कोई निवेश की सलाह देने से पहले ताकि कोई ज़रूरी फैक्टर नज़रअंदाज ना हो जाए या इमोशनल फैसला ना हो, इवेंट मैनेजमेंट में सोचिए भारत में शादियों की प्लानिंग कितनी जटिल होती है, एक अच्छी चेकलिस्ट कितनी मददगार हो सकती है। कोई भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो, कोई सरकारी योजना हो या अपना कोई स्टार्टअप शुरू करना हो।
और निजी जिंदगी में, मतलब घर परिवार में?
क्यों नहीं, बिल्कुल। सबसे आम तो है ट्रैवल पैकिंग लिस्ट, कौन नहीं भूलता अपना चार्जर या टूथब्रश। घर बदलना हो या घर में कोई बड़ा रेनोवेशन कराना हो, उसके लिए एक मास्टर चेकलिस्ट। सुबह उठने की रूटीन या रात को सोने से पहले की तैयारी की चेकलिस्ट। अच्छी आदतें बनाने में मदद मिलती हैं। ग्रोसरी लिस्ट तो खैर हम सब बनाते ही हैं, वो भी एक तरह की चेकलिस्ट है। कोई नई या मुश्किल रेसिपी ट्राई कर रहे हो तो मीजन प्लास चेकलिस्ट, मतलब सारी सामग्री और तैयारी पहले से करके रखना।
हाँ, ये सब बहुत काम की चीजें हैं। तो अगर कोई अपनी खुद की चेकलिस्ट बनाना चाहे तो क्या मुख्य बातें ध्यान में रखनी चाहिए, कुछ टिप्स?
हाँ, गवांडी की किताब और बूरमैन के अनुभवों से कुछ बातें निकलती हैं। सबसे पहले तो ये पहचानिए कि गलतियां होती कहाँ हैं, कौन से स्टेप्स हैं जो अक्सर छूट जाते हैं या भूल जाते हैं। स्पष्ट पॉज पॉइंट्स तय करें, मतलब कहाँ रुककर जांचना या कन्फर्म करना जरूरी है। इसे छोटा रखें, 5 से 9 आइटम आदर्श हैं। लंबी लिस्ट देखकर ही आलस आ जाता है, कोई इस्तेमाल नहीं करेगा। भाषा बिल्कुल साफ, सीधी और एक्शन वाली हो। सुनिश्चित करें या जांचें, बनाने के बाद उसे टेस्ट करें, क्या ये सच में काम कर रही है, क्या इसे इस्तेमाल करना आसान है। फीडबैक लें और सुधारें। पहली बार में परफेक्ट शायद ही बने, और अगर टीम के लिए बना रहे हैं तो इसे ऐसा बनाएं कि ये बातचीत को बढ़ावा दे, सिर्फ हुक्म ना लगे।
ये बहुत ही उपयोगी सुझाव है, शुक्रिया। तो इस पूरी चर्चा के बाद अगर मैं आपसे पूछूं, आपके लिए सबसे बड़ा टेक अवे या सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात क्या रही इस किताब से?
मेरे लिए तो वो WHO स्टडी के आंकड़े ही सबसे ज्यादा असरदार थे। मौतों में 47% की कमी। ये आंकड़ा दिखाता है कि एक कितना सरल सा लगने वाला उपाय कितना शक्तिशाली हो सकता है, कितने जीवन बचा सकता है। और हाँ, कैप्टन सली वाला उदाहरण भी, कि असली हीरोइज्म अक्सर शांत अनुशासित प्रक्रिया में छिपा होता है।
हाँ, मेरे लिए भी WHO स्टडी के नतीजे दिमाग में बैठ गए, और साथ ही वो अकुशलता बनाम अज्ञानता वाला फर्क, ये बार बार सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी जिंदगी में, अपने काम में कितनी बार ऐसी गलतियां करते हैं जिनके बारे में हमें पता होता है कि ये नहीं करनी चाहिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम ध्यान नहीं देते या प्रक्रिया को फॉलो नहीं करते। ये विनम्रता सिखाता है।
बिल्कुल। तो श्रोताओं के लिए हम आज एक सवाल छोड़ जाते हैं। सोचिए, आपकी अपनी जिंदगी या आपके काम का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां एक छोटी सी सोच समझकर बनाई गई चेकलिस्ट किसी बड़ी गलती को होने से रोक सकती है या आपके प्रदर्शन को काफी बेहतर बना सकती है। जरूर सोचिएगा इस पर।
इसी विचार के साथ अब आपसे विदा लेने का समय है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।